नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाहूणं ईसो पंच नमो यारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसि पढमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहन्तु मंगलं सिद्धमंगलं साहु मंगलं केवलिपण्णतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तु लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि कैवलिपण्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि। महामंत्र के पद अक्षर मात्राएं व्यंजन और स्वरों की अपन ने गणना की थी और प्रथम पद जो 7 अक्षर का है उसके विषय को लेकर शास्त्रों में जो उसकी महिमा बताई है जिसको अभी नमोकार के महात्म्य इस शब्द के द्वारा अभी अभी थोड़ी देर पहले निवेदन के समय कहा गया था कि नमोकार के महात्म्य से हमें अवगत कराएं। तो उस विषय में हमने 2 उदाहरण दिए थे एक तो सेठ सुदर्शन जो पूर्व भव में एक बालक सुभग नाम के ग्वाले थे और उनको रिद्धिधारी साधु से जब नमोकार मंत्र प्राप्त हुआ पहला ही पद मिला था उनको तो हर कार्य वो उसी से करते थे गुरु के निर्देशानुसार। अंततः वह अपनी आयु पूर्ण करके सेठानी के पुत्र होकर अनेक उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हुए अंत में पाटलिपुत्र से निर्वाण धाम को प्राप्त हो गए। उन्होंने केवल ज्ञान भी उपसर्ग में ही प्राप्त किया था, उपसर्ग केवल ही थे वो, और फिर मोक्ष भी वहीं प्राप्त कर लिया था। उपसर्ग उनके ऊपर जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 7 दिनों तक उपसर्ग चला था वैसे ही सुदर्शन मुनिराज पर भी 7 दिनों तक उपसर्ग चला था। और हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में कुछ मुनिराजों के नाम दिए हैं तो उन नामों में बड़े सम्मान के साथ आचार्य अकलंक भट्ट, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, जो अकलंक निष्कलंक दोनों भाई थे और बड़े संकट के समय उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की थी और जिन्होंने देवी को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, 6 महीने तक शास्त्रार्थ हुआ था और अंततः उन्होंने देवी को पराजित कर दिया था। कितना अद्भुत ज्ञान होगा, 6 महीने तक शास्त्रार्थ करना कोई साधारण कार्य है। इतने महान आचार्य बड़े सम्मान के साथ जो 7 अक्षरों की आराधना करने वाले उस गोप बालक सुभग के अंतिम भाव का जो सुदर्शन नाम है उसका स्मरण कर रहे हैं। देखिए, संसारस्य अंतःकृतो यैस्ते अंतःकृतः, जिन्होंने संसार का अर्थात अपने चारों गतियों संबंधी भाव भ्रमण का अंत कर डाला, वे अंतकृत कहलाते हैं। नमी मतंग सोमिल रामपुत्र सुदर्शन यमलीक वलीक किश कंबल पालांब अष्टपुत्रा अष्टपुत्र इत्येते 10 वर्धमान तीर्थंकर तीर्थे। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रत्येक तीर्थंकर के काल में केवल 10 ऐसे साधु होते हैं जो भयंकर से भयंकर संकट पर विजय प्राप्त करके 8ों कर्मों का नाश करते हैं। उन 10 में सुदर्शन नाम आते हैं, जिन्होंने केवल नमो अरहंताण इस पद की आराधना की थी और बड़े बड़े उपसर्गों को जीतकर निर्वाण धाम में विराजमान हो गए। तो एक ये कथा थी और 7 अक्षरों के विषय में। दूसरा जो नाम लिया था हमने, मूलाचार ग्रंथ का नाम लिया था। मूलाचार ग्रंथ में एक बहुत गंभीर प्रसंग है, संलेखना का वर्णन जहां पर आता है, बृहत प्रत्याख्यान संस्तव अधिकार है वहां पर, मूलाचार ग्रंथ का दूसरा अधिकार है। अधिकार का अर्थ अध्याय होता है। उसमें एक प्रसंग आया कि जब संलेखना का समय आता है तो बड़े बड़े महान तपस्वी साधुओं का शरीर भी जीर्ण शीर्ण और शिथिल हो जाता है। जो साधु इतने शक्ति संपन्न थे कि जिनकी शक्ति के सामने इंद्रादिकों की शक्ति भी दुर्बल पड़ जाती थी, इतने शक्ति संपन्न जो साधु होते हैं वो भी संलेखना में जब 12 वर्ष तक एक निश्चित क्रम से त्याग और तपस्या को वृद्धिंगत करते चले जाते हैं, तब आचार्य महाराज ने उस प्रसंग में लिखा है कि वो अंत में क्या साधना करते होंगे, मरण काल में मरण से पूर्व वो साधु क्या करते होंगे। हम उस प्रसंग को आपके समक्ष रखते हैं। मरण के समय कैसे महामंत्र काम कर जाता है। एक एक गाथा इतनी सुंदर है, अंतूण राय दोषे छितूण अठ कम संखलयम जमण मरण रहट्टम भीतूण भवाय मुच्चहिसी। उनको गुरु कहते हैं कि ही क्षपकराज, ही महासाधु, राग द्वेष का नाश करके 8 कर्मों की सांकलों को काट करके जन्म और मरण का जो ये घटी यंत्र है, ये जो फेरा है, ये जो चक्कर है, रहट बोलते हैं उसको, उसके टुकड़े टुकड़े करके तुम मनुष्य, देव, तिर्यंच और नरक गति संबंधी जो भाव हैं उससे मुक्त हो सकते हो। बहुत धीमे से संबोधन करते हैं, राग द्वेष को नष्ट करके 8 कर्मों की सांकलों को काट करके और जन्म मरण की रहट के टुकड़े टुकड़े करके तुम संसार से मुक्त हो सकते हो। हे भव्य जीव, सव्यमिदम उपदेशम जिन दिठम सद्धामिति विहीन तस्थावर खेम करम सारमणि वाण मगस। जिनेंद्र भगवान द्वारा दिए गए निर्वाण मार्ग के सार स्वरूप त्रस और स्थावर जीवों को कुशलता प्रदान करने वाले उपदेश का मैं तीनों योगों से श्रद्धान करता हूं। उक्षपक के अंदर ये भाव आ रहे हैं, और वो क्षपक श्रुत केवली है। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, इतना ज्ञान है उनके पास कि उससे अधिक ज्ञान होना संभव ही नहीं है। केवल ज्ञान से पूर्व ये सर्वोपरि ज्ञान है, आगम का संपूर्ण ज्ञान उनके पास है। लेकिन फिर भी आचार्य लिखते हैं कि वो उस समय श्रद्धा कर रहे हैं जिनेंद्र भगवान के वचनों पर। वो अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि मैं जिनवाणी पर पूर्ण श्रद्धा करता हूं। नहीं तम्मी दे से आले सबको बारस विहो सुदक खंधो सवो अणुचिंते दुम बलिना विसमत्थ चित्तेन। कुछ समय उनके उनका शेष रह गया है, मनुष्य भव पूर्ण होने जा रहा है, ग्रंथकार कह रहे हैं कि उस स्थान पर जहां वो संलेखना कर रहे हैं और उस समय पर जब उनकी संख्यात श्वास अवशिष्ट है, अल्पकाल शेष है, तब बारस विहो सुदक खंधो सवो अणुचिंतेदम नहीं सबको, द्वादश विध जो श्रुत स्कंद है वो यंत्र भी बनता है श्रुत स्कंद, वो सारा ज्ञान उनके हृदय में भरा पड़ा है, लेकिन उनका चिंतन कर पाना शक्य नहीं होता। सब वो मतलब पूर्ण द्वादशांग का चिंतन शक्य नहीं होता, भले ही वो साधु बलिनावि समर्थ चित्तेण, बलवान हो और समर्थ चित्त वाले हो, उनका मन बिल्कुल जागृत हो, कोई गाफिलता ना हो, बिल्कुल सब चिंतन स्पष्ट रूप से करने की शक्ति हो उनमें, तब भी संपूर्ण जिनवाणी का चिंतन उस काल में शक्य नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में कौन सहारा होता है? एक गाथा टिप्पण में दी हुई है, बड़ी सुंदर गाथा है। सत्तखर सज्जाणम अरहंताणम नमोति भावेण जो कुणदि अनन्नमदि सो पावदि उत्तमं ठाणम। मूल में एक कम्मीय विधियम्मी पदे एक कम्मे वेदी, एकम विधियम मिपदे संवेगो वीराय मग्गम्मी वच्चदिनरो अभिक्खम तम मरणन्ते नमोत्तवम्। नमोकार का वर्णन करते करते अभी अपन एक ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां पर कोई साधु है, महाशक्ति संपन्न है, द्वादशांग के पाठी है, काय बल भी उनके पास विद्यमान है और मनोबल भी उनके पास यथावत है, तो भी आचार्य कह रहे हैं कि मरण काल में संपूर्ण द्वादशांग का चिंतन मनन मंथन अशक्य है। तो ऐसी स्थिति में मरण काल में वो क्या करते हैं? तो कह रहे हैं कि एकम्मी पदे विधियम्मी पदे वीयराय मग्गम्मी संवेगो नरो वच्छदि अभिक्खम तम मरणंते नमोत्तवम। बोलते हैं कि नमोकार का एक पद पकड़ लो, विधियम्मी अथवा दूसरा पद पकड़ लो, और उपलक्षण से कोई भी पद पकड़ लो, नमोकार के 5 पद हैं उनमें से कोई भी पद पकड़ लो और धर्म के प्रति प्रीति रखने वाले, धर्म के फल को चाहने वाले वे साधु वितराग मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और अभिक्खम अखंड रूप से मरणंते तम न मोत्तव्यम, मरण पर्यंत उस पद को नहीं छोड़ते, बस उसी पद में अपना ध्यान लगाकर रखते हैं। पंडित सुमेर चंद्र दिवाकर जी 26 जनवरी सन 1994 को जब मरणासन्न हुए थे तब उनको जो धर्म श्रवण करा रहे थे उन्होंने पूछा, उनको भक्तावर बहुत प्रिय था, भक्तावर पाठ सुना दे। तब उन्होंने ऐसे कहा, इशारे से मना किया और ऐसा इशारा किया, नमोकार का संकेत किया और ज्यों ही नमोकार मंत्र उनको सुनाया गया उनकी आयु पूर्ण हो गई। अंत में गला सूख जाता है, आवाज नहीं निकलती कभी कभी, तो दूसरे सुनाते हैं। तो नमोकार सुनते हुए जाना भी बहुत बड़ी बात है और इससे फिर ये बात अनुमानित की जा सकती है कि पंडित जी को ज्ञात था कि भक्तामर यदि मैं सुनूंगा तो पूरा नहीं सुन सकूंगा, इसलिए वो नमोकार सुन करके चले गए। पंडित देवकी नंदन शास्त्री जी भी अंत में उससे नीचे आ गए, धरती पर वो बैठ गए, वस्त्र पृथक किए और फिर ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ करके नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, उनके विद्यार्थी उनको नमोकार सुना भी रहे थे, वो चले गए। पंडित गोपाल दास बरैया जी भी कहते हैं कि नीचे चटाई बिछाओ, क्यों गुरुजी? गुरुजी टीचर्स को गुरुजी बोलते थे उस समय, गुरुकुल पद्धति का संस्कार था, बोले कि बिछा दो, तो उनने बिछाई चटाई, वो नीचे आ गए और उन्होंने भी अपने वस्त्र त्याग कर दिए, बोले कि मेरे सब परिग्रहों का त्याग है, मैं सबको क्षमा करता हूँ, नमो वरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिम, सब जीव मुझे क्षमा कर। नमोकार करते करते चले गए। ऐसे जो निश्चल विद्वान थे जिन्होंने अभिप्राय पूर्वक आगम के किसी अर्थ का अनर्थ नहीं किया, जिन्होंने देवशास्त्र गुरु की कभी अभिनय नहीं की, जिन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया, जिन्होंने धर्म की प्रभावना की, अपने नाम की परवाह नहीं की, उनका मरण हमेशा सुमरण हुआ है। और ये जो गाथा आई है ये इतनी महत्वपूर्ण, फलटण की प्रति में ये गाथा उपलब्ध होती है, 7 अक्षरों का उत्तम ध्यान कौन से 7 अक्षर? अरहंताणम नमोति, नमो अरहंताणम, छंद में क्रम ऐसा लिखा है, भावेण जो अनन्न मदी कुणदी, जो अपनी बुद्धि को कहीं अन्य न भटकाते हुए श्रद्धा पूर्वक नमो अरहंताणम, क्या केवल इन सात अक्षरों के पद का उत्तम ध्यान करते हैं, अर्थात जो अपने धर्म ध्यान में केवल इन सात अक्षरों को अचल करते हैं, सो पावधि उत्तम ठाणम, बहुत सुंदर बात लिखी है, वो उत्तम स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये कार्य करना असाधारण कार्य है, और जो अपने आप को साधारण समझते हैं वही कर सकते हैं, असाधारण समझने वाले अभिमानी बन जाते हैं, और अभिमानी के बस की बात नहीं है। तो नमो अरहंताणम का महत्व अभी अपन ने यहां पर भी देखा कि मरण काल में एक श्रुत केवली मुनिराज, जैसे आचार्य भद्रबाहु स्वामी थे, उनके गुरु आचार्य गोवर्धन स्वामी थे, उनके गुरु आचार्य अपराजित स्वामी थे, उनके गुरु आचार्य नंदी मित्र स्वामी थे, और उनके गुरु आचार्य विष्णु थे। ये पांच श्रुत केवली इस पंचम काल के श्रुत केवली हैं। चौथे काल में सारे गणधर श्रुत केवली होते हैं, 12 अंगों का जिनको ज्ञान होता है उनको श्रुत केवली कहते हैं। और श्रुत केवली के विषय में धवला की पहली पुस्तक में और समय पाहुड़ की तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्यों ने लिखा है कि वो अल्पकाल में मोक्षगामी होते हैं। श्रुत केवली यदि मोक्ष चले गए तो उसी भव में मोक्ष चले गए, पर पंचम काल में श्रुत केवली होंगे तो मोक्ष उस भव में नहीं होगा। चतुर्थ काल में भी यदि संघनन मोक्ष के योग्य नहीं हुआ और श्रुत केवली पद प्राप्त हो गया तब भी निर्वाण नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, तो फिर वो तीसरे भव में मोक्ष चले जाते हैं। श्रुत केवली के विषय में एक नियम बताया है कि श्रुत केवली हो जाने के उपरांत संयम से पतन नहीं होता। एक तो संयम के साथ ही यह पद प्राप्त होता है, श्रुत केवली का पद, और अगर श्रुत केवली हो गए तो फिर उनका गुणस्थान छठे गुणस्थान से नीचे नहीं आ सकता। और दूसरा नियम यह बताया कि वो मोक्ष पर्यंत वापस मिथ्यात्व में नहीं आ सकते, देवगति में वो असंयम में तो आ सकते हैं लेकिन कभी मिथ्या दृष्टि नहीं बन सकते। और तीसरा नियम यही है कि वो अल्पकाल में मोक्ष चले जाते हैं। अगर वर्तमान भव में वो मोक्ष नहीं गए तो तृतीय भव में अवश्य मोक्ष जाएंगे। कोई प्रश्न कर सकता है कि द्वितीय भव में क्यों नहीं, तो उसका उत्तर है कि जो भी सम्यक दृष्टि होते हैं, जो भी संयमी व्रती होते हैं, वो मनुष्य से मनुष्य नहीं बनते और मोक्ष मनुष्य गति से ही होता है। तो दूसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति वही कर सकते हैं जिनको दूसरे भव में मनुष्य गति में जाना है, और वो यहां संभव नहीं है। संयम के साथ उनको देवगति मिलेगी और देवगति में भी वो साधारण देव ना बनकर महार्धिक देव बनेंगे। वैमानिक देवों में धवला की पहली पुस्तक में तीन स्थानों का निषेध किया है, सम्यक दृष्टि जी उन तीन देवों में उत्पन्न नहीं हो सकते। 10 प्रकार के देव आप जानते होंगे, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलविषिक। इन 10 देवों में से अंत के जो तीन देव हैं उन तीन देवों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते, वे नियमतः मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं। कालांतर में सम्यक दृष्टि हो सकता है, जैसे भवनत्रिक में सम्यक दृष्टियों की राशि सर्वाधिक बताई है। इस जगत में सर्वाधिक सम्यक दृष्टि कौन सी गति में है, तो बोले देवगति में, देवगति में चार निकाय है, चार निकायों में कौन से निकायों में है? तो बोले भवनत्रिक में। तो बोले भवनत्रिक में तीन भेद हैं, भवनवासी, मानव्यंतर और ज्योतिष्क। तो इन तीन में सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि कहां पर है? तो बोले ज्योतिष्क देवों में। फिर मनुष्य गति में कितने सम्यक दृष्टि है, जिन्होंने अणुव्रत अथवा महाव्रत नहीं अंगीकार किया है, यानी जो चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं जा पाए हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि मनुष्य कितने हैं पूरे मनुष्य लोक में? 170 कर्म भूमियों में, आर्यखंडों में कितने मनुष्य सम्यक दृष्टि है? तो फिर उसका उत्तर दिया 700 करोड़। कितने? 700 करोड़, जिसको आज अपन 7 अरब भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में देख लेना क्या बोलेंगे उसको। उतने सम्यक दृष्टि हमेशा रहता है, और उनमें कई ऐसे सम्यक दृष्टि भी हैं जो मां के गर्भ में है अभी, और देव गति से वो सम्यक दर्शन साथ में लेकर के आ रहे हैं। अथवा क्षायिक सम्यक दृष्टि कोई ऐसे जीव भी हैं जो नरक गति से, नरक गति में प्रथम पृथ्वी तक क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव का गमन शक्य है, तो वो क्षायिक सम्यक दर्शन को लेकर मां के गर्भ में अवस्थित है, अभी जन्म नहीं हुआ उनका, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भी हैं उन 700 करोड़ सम्यक दृष्टियों में। तो 7 अक्षरों की महिमा बताते हुए आचार्य महाराज ने लिखा है कि इन 7 अक्षरों का उत्तम ध्यान करने वाले, अपनी बुद्धि को यहां वहां न भटकाने वाले जो भी मनुष्य हैं, वे उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। और वो क्षपक की ही चर्चा है वहां पर, क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज जब सल्लेखना में स्थित है और श्रुत केवली तक के उनका ज्ञान पहुंच चुका है, बलवान है, विचार समर्थ है, लेकिन अंत में ये 7 अक्षर ही काम आते हैं। इसलिए नमोकार को साधारण नहीं समझना। कई बार ऐसा होता है ना कि कई साधु ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो माला ही करते रहते हैं दिन भर, तो कुछ लोगों के मन में ऐसा आता है कि ये साधु तो ऐसे ही है, मतलब निरक्षर है और सिर्फ माला ही माला करते रहते हैं और कुछ इनको आता जाता नहीं। एक बात याद रखना, और कुछ अंत में काम भी नहीं आता। अभी अपन ने क्या पढ़ा, वो केवल नवोकार ही अंत में काम आता है। तो फिर ये सब बातें अपन पता नहीं क्यों, केवल ज्ञानियों के आराधक होकर के थोड़ा सा ज्ञान होने पर अभिमान आ जाता है, पता नहीं कैसे ऐसा हो जाता है। तो उनके गुणों का स्मरण करके अपने को विनम्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विनय और वात्सल्य वाले ही सल्लेखना को प्राप्त होते हैं। सारे अभिमानी अंत में असफल हो जाते हैं, सारा ठाट बाट निरर्थक हो जाता, कोई काम नहीं आता। यश हो, प्रशंसा हो, सब दुनिया की बातें हो, लेकिन कुछ काम नहीं आता, केवल 7 अक्षर काम आ जाते हैं, नमो अरहंताण। अब उन 7 अक्षरों का अर्थ सुनेंगे आप। नमो अरहंताणम के 2 अर्थ हैं। कल अपन ने नमोकार की संस्कृत छाया भी सीखी थी, नमोरहद्भ्यः, और दूसरा रूप बनेगा जो 2 अर्थ बता रहे हैं ना, नमो अरहंताणम के। अभी अरिहंताणम की चर्चा नहीं प्रारंभ हुई है, नमो अरहंताणम की चर्चा कर रहे हैं। इसमें नमोरहद्भ्यः ये एक पद हुआ, और दूसरा पद होगा नमोर नमो रहंत्रिभ्यः। विग्रह करेंगे तो नमः अरहंत्रिभ्यः, अरहंत्रिभ्यः ऐसा रूप बनेगा। अब देखिएगा दोनों के सुंदर अर्थ हैं। धवल ग्रंथ की पहली पुस्तक में नमोरहतभ्यः इस पद का अर्थ जो बताया वो ये है कि जो अरहत है, अरहत कौन है और अरहंत कौन है, दोनों में अंतर देखिएगा। अरहंत में क्या रह के ऊपर रेफ, ह के ऊपर रेफ, और दूसरा अरहंत जो है उसमें र पूरा है। प्राकृत में दोनों के एक ही रूप बनते हैं, नमो अरहंताण। तो इस पर ध्यान दीजिए और एकदम उल्लसित रह करके इसमें आनंद के साथ आप इसका वो लीजिए। क्या होता है कि उपदेश सुनते हैं, जैसे टीचर लेक्चर देते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद विद्यार्थी थोड़े वो हो जाते हैं सुनते सुनते, तो एकदम सतर्क जागृत होते हुए इस बात को सुनिएगा। क्योंकि अब की बार आप जब अर्थ समझने के बाद आप नमस्कार करो तो आपका ध्यान अर्थ की ओर जाए, तो वो नमोकार का पाठ नहीं रहेगा, वो नमोकार का ध्यान बन जाएगा। जो ही आप अर्थ की ओर जाएंगे ना, तो वो नमोकार का ध्यान हो जाएगा, और केवल आप पाठ करेंगे तो उसको पदस्थ ध्यान कहा है, क्योंकि उस समय आपका ध्यान पदों पे है, नमोकार के पद पर है। और उसके बाद अर्थ पर अगर ध्यान चला गया तो वो ध्यान हो जाएगा नमोकार का। तो अरहद्भ्यः और अरहंत्रिभ्यः ये दो शब्द हैं। अरहद्भ्यः का अर्थ धवल ग्रंथ की पहली पुस्तक में लिखा है, सातिशय पूजा अर्हत्वा द्वारहंतः। जो केवली भगवान, केवली भगवान सात प्रकार के होते हैं, उन सातों को नमो अरहंताणम में नमस्कार कर रहे हैं, सात प्रकार के केवलियों को नमस्कार कर रहे हैं। देखो कैसा सौभाग्य है कि वही पृष्ठ खुला है, जबकि हमने वो कोई अन्य उद्देश्य से खोला था पृष्ठ, और पृष्ठ वो खुल गया। अतिशय पूजार हत्वा द्वारहंतः, पहले उन्होंने नमो अरिहंताणम का अर्थ किया, तो अरिहंताणम शब्द का अर्थ करने में लगभग दो तीन पृष्ठ चले गए। अपन पहले नमो अरहंताणम का अर्थ कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने अर्थ निकाला अतिशय पूजार हत्वा द्वारहंतः, अथवा अतिशय से युक्त पूजा के जो योग्य होते हैं, तो उसके कारण वो अरहंत कहलाते हैं। यहां रेफ है ऊपर, प्राकृत में अर पूरा ही लिखा जाएगा, संस्कृत में रेफ आ जाएगी। तो वो अतिशयकारी पूजा किन की होती है, तो इसमें आचार्य महाराज आगे लिख रहे हैं, स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्क्रमण केवल ज्ञानोत्पत्ति परिनिर्वाणीषु देवकृतानां पूजानां देवासुर मानव प्राप्त पूजाभ्यो अधिकत्वादतिशय दतिशया नाम अर्हत्वाद योग्यत्वाद अर्हंत। स्वर्गावतरण, आप समझ रहे हैं स्वर्गावतरण का अर्थ गर्भ कल्याणक होता है। फिर जन्माभिषेक, इस कल्याणक का नाम ही जन्माभिषेक दे दिया, जन्म कल्याणक। फिर परिनिष्क्रमण, परित निष्क्रमण, निष्क्रमण का अर्थ होता है निकल जाना, छोड़ छाड़ करके चले जाना, परिनिष्क्रमण का अर्थ दीक्षा कल्याणक। और केवल ज्ञान उत्पत्ति, केवल ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है ज्ञान कल्याणक होता है। और परिनिर्वाणेषु, और परिनिर्वाण होता है द्रव्य कर्म से निर्वाण, भाव कर्म से निर्वाण, नो कर्म से निर्वाण। तो परितः निर्वाणम परिनिर्वाणम, और ये द्वंद्व समास में पांच की संख्या होने से अंत में बहुवचनांत पद है निर्वाणेषु। इन पांच अवसरों पर देवकृतानां पूजानां अर्हत्वात् योग्यत्वात् अर्हन्तः, देवों द्वारा की गई पूजा के जो अर्ह अर्थात योग्य होते हैं उन्हें अर्हंत कहते हैं। अर्ह का अर्थ होता है योग्य, किसके योग्य? पंच कल्याणकों में देवों द्वारा की जाने वाली पूजा के योग्य वो अर्हंत होते हैं। और इनको अतिशय क्यों कहा? अतिशय का अर्थ होता है बढ़ करके। सामान्य जो घटनाएं होती है उनको अतिशय नहीं कहते हैं, जो उन घटनाओं से बढ़ करके कुछ अलग सी घटना हो जाती है उसको अतिशय कहते हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं, देवासुर मानव प्राप्त पूजाभ्य, देवों के द्वारा, असुरों के द्वारा, मानवों के द्वारा प्राप्त पूजाओं के कारण अधिकत्वात्, वो जो पूजा होती है वो सामान्य पूजाओं से बढ़ करके होती है, तो इसलिए उन पूजाओं को अतिशयानाम अतिशय कहा है, अतिशय कारणी पूजा कहा गया है। और तीर्थंकरों के 34 अतिशय भी होते हैं, तो उन सब के पंच कल्याणकों के समय होने वाली देवताओं द्वारा कृत पूजाओं के योग्य, और जो 34 अतिशयों के योग्य होते हैं वे अर्हंत होते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अर्हंत तो केवल तीर्थंकर होते हैं। तो 7 प्रकार के केवलियों में नमो अर्हंताण में यदि अर्हंत, इसकी छाया संस्कृत छाया अगर आप रेफ वाले ह के साथ करते हैं तो फिर उसमें केवल तीर्थंकरों को नमस्कार है। ठीक है, तो नमो अर्हंताण में अगर संस्कृत छाया अर्हत ब्यह कर की जाती है तो फिर तीर्थंकरों को नमस्कार होता है। लेकिन नमो अर्हंताणम का दूसरा अर्थ चारित्र पाहुड़ के मंगलाचरण की टीका में उपलब्ध होता है, वो अपन एक बार पढ़ लेते हैं। अरहंता शब्द है, सवर्ण सवदंसी निमोहा वीराय परमीठी वंद तु तिजगवंदा अरहंता भवजीवेहि नाणं दंसन सम्मं चारित्तम सोहि कारणं तेसिम मुखाराहण हेम चारित्तम पाहुडं वोच्छे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी निर्मोह वीतराग परमेष्ठी तीनों जगत के लिए वंदनीय भव्य जीवों के द्वारा वंदना को प्राप्त अरहंतों की मैं वंदना करता हूं। कुंदकुंद आचार्य महाराज ने लिखा और उनकी वंदना करके ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व चारित्र और इन चारों में ज्ञान दर्शन सम्यक्त चारित्र इनकी शुद्धि के कारण और मोक्ष में कारणभूत मोक्ष की आराधना में हेतुभूत चारित्र प्रावृत ग्रंथ को मैं कहूंगा। ये मंगलाचरण में दो बातें होती है ना, एक तो इष्ट को नमस्कार होता है और दूसरा अपना संकल्प होता है कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे भक्तावर में सम्यक प्रणम में लिखा है और बाद में लिखा है स्तोष्ये, तो अच्छी तरह प्रणाम करके फिर मैं स्तुति करूंगा, ऐसा संकल्प। तो यहां पर अरहंता शब्द जो है ना, इसका अर्थ अपन देख रहे हैं ना, अरहंता अ अरहंतृभ्य ऐसा रूप बना करके अर्थ कर रहे हैं। अरिर्मोह अ से क्या लेना, अरि लेना, ठीक है। अभी अरिहंताणम की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अरहंताणम की व्याख्या में जो अ है उस अकेले अ से अरि ले रहे हैं। तो अरिर्मोह, अरि कौन है, मोह। संसार के अनंतानंत जीवों का एक ही शत्रु है मोह। और रकारेण रजो लभ्यते तेनैव प्रकारेण रहस्यम कथ्यते। र से क्या लेना, र से पहला तो आप रज ले लीजिए, और रज जो है धूल को कहते हैं। तो अपनी आत्मा पर कौन सी धूल लगी हुई है, तो सभी पूर्वाचार्यों ने एक मत से कहा है कि वैसे तो कर्म रूपी धूल लगी है, पर ज्ञान और दर्शन पर जो धूल आच्छादित है वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये जो दो कर्म है ये वास्तव में रज है अर्थात धूल है। मोह तो शत्रु है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण रज है। और र से एक दूसरा भी शब्द निकलता है, रहस्य। रहस्य का अर्थ होता है कुछ हो जाए लेकिन अपने को पता ना चले कि ये कैसे हुआ, उसका राज क्या है ये समझ में ना आए। तो आचार्य कहते हैं कि वो कौन सा कर्म है जिसको रहस्य कहा जा सकता है, तो रहस्यम अंतराय कथ्यते। रहस्य जो है वह अंतराय कर्म है। तेन घाति कर्म चतुष्टय हननाद अरिहंता इंद्रादि कृतानाम अनन्य संभाविनी मरहणाम पूजाम अरहंती त्यरहंतस तान अरहतः। तो इन चार घाती कर्मों से जो ऊपर उठ चुके हैं, इनका जो हनन कर चुके हैं, हंती इति हंता, हन धातु में त्रिच प्रत्यय करने पर हंता शब्द बनता है, तो हंता हंतारो हंतारा ऐसे एक वचन द्विवचन बहुवचन इसके पूरे रूप चलते हैं। तो अरहंत्री, अरे रजसो हो रहस्यस्य च हंता इति अरहंता। दोनों र को एक में ले लिया, रज को और रहस्य को एक ही र में ले लिया और अ को भी उसमें मिला दिया, तो अ र मिलाने से अर हो गया। और अ और र के जो हंता है वो अरहंत है। इस प्रकार नमो अरहंताणम का अर्थ होता है चार घाती कर्मों के हंता। और सात प्रकार के केवल ज्ञानी कौन से हैं, तो उनके नाम अपन आगामी सत्र में देखेंगे। आज अपन ने एक तीर्थंकर केवली का तो परिचय प्राप्त किया कि जो कल्याणकों से और अतिशयकारिणी पूजाओं से संपन्न होते हैं और उसके काबिल होते हैं, योग्य होते हैं, वो अरहंत तीर्थंकर कहलाते हैं। जैनम जयतु शासनम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कहीं धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ महं यजे जिन गृहे जिन सूत्र महं यजे जिन गृहे जिन सूरी महं यजे। ओम ह्रीं ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम रह। अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्यायीभ्यो अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो जिनागमाय च अनर्घ्य पद प्राप्ते देवशास्त्र गुरुभ्यो अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। जैनम जयतु शासनम।